लेकिन वो हमने फेमिनिज्म को क्यों डिस्कस किया था इस पैटर्न में? हाँ, नॉवल्टी के कॉन्टेक्स्ट में
ऐसी बात फेमिनिज्म से ज्यादा करता है, हम कुछ नया पेश
कर रहे हैं। फेमिनिज्म को पैटर्न में नया है, नहीं नहीं, और नया मानसिकता, नई क्या इस नए पन की जो बड़ी आनंद बन रहा है वो भूमि, और इनकी साजिश वाजिश नहीं हो रही, तो साजिश कर रहे हैं ऐसा समझते हैं वो, ऐसा ही समझते हैं। ऐसी थोड़ी इतनी दुनिया में फैल रही है, जो जहीन तरीन औरतें होती हैं दुनिया की, वो इसको एक ट्रू फेस वैल्यू के तौर पर लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो बिकी हुई और गद्दार हैं कोई, ऐसा नहीं है। अगर हमने इसको ये समझा कि वो बिकी हुई और गद्दार औरत हैं तो हम मिस फायर करेंगे, हम कंटेक्चुलाइज सही नहीं करेंगे। वो जेन्युइनली मॉरल ग्राउंड पे इस खड़ी भी होती है, वो ये समझ रही होती हैं कि ये सब हमारे साथ जो हुआ है पैट्रियार्की की वजह से हुआ, और पैट्रियार्की को सपोर्ट करता है रिलीजियस इंटरप्रिटेशन, बोथ इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, दोनों दोनों बड़े मजहब जिन्होंने दुनिया में एक निज़ाम कायम किया है, एक ना एक निज़ाम, एक निज़ाम तहकीम भी मौजूद है, एक निज़ाम अदल भी मौजूद है उनका था। तो वो कहते हैं कि इसकी विक्टिम हम क्यों बने, क्योंकि ये मर्दों के हकूक के तहफ्फुज के जवाब थे। तो इसलिए फेमिनिज्म की एक खास संख्या एंटैगनिज्म भी रिलीजन के साथ भी है, देखिए वो रिलीजन के खिलाफ एक खास संख्या आपको मुखासिमाना ताल्लुक, खास तौर पर जो भी मजहबी ग्रुप्स हैं, चाहे वो ईसाइत के अंदर पोप्स की शक्ल में और नंस की शक्ल में, या मॉन्क्स की शक्ल में, या आलिमों की शक्ल में, उनके खिलाफ एक खास रकम का रवैया होता है कि कुछ नएपन के खिलाफ है, नएपन के सही। ये हमने
जो मतलब पूछा है मतलब उसको ये कैसे एड्रेस करते हैं? ये तो है कि जो मतलब एंटी फेमिनिस्ट मूवमेंट, यानी ये कहते हैं कि ये एंटी फेमिनिस्ट है, लेकिन असल तो वो अपने आप को फेमिनिस्ट ही कहते हैं,
पोस्ट फेमिनिस्ट,
जिन्होंने अपने आप को जो पहले की है और उन्होंने अलग कर लिया अपने आप को, किताबें किताबें लिखी हैं और कहा कि हर कोई हमारा वो नहीं बल्कि वो तो मजलूम है, उसके साथ तो बड़ा जुल्म होता है, और उन्होंने शादियां भी कर ली और किताबें भी लिख दी, सब अकवास है फेमिनिज्म के नाम पर जो भी हो रहे हैं। तो उनकी जो है मतलब ये क्या जो है फर्क है मतलब वहाँ पर,
मैंने डायरेक्टली तो नहीं पढ़ा कि उसके ऊपर क्या अंदर की लड़ाई की वो कैसे देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है कि हम फेमिनिस्टों की अंदर की लड़ाई को भी देखें, मैंने नहीं देखा। लेकिन जो आम तौर पे आर्ग्यूमेंट होता है एंटी फेमिनिस्ट मूवमेंट, यानी कि एंटी फेमिनिस्ट फोर्सेस के बारे में जो एतराज होता है वो पॉपुलर है, वो मैं बताता हूँ। जो आम एतराज का होता है वो ये कि दरअसल इन लोगों में जुर्रत नहीं थी सिस्टम के खिलाफ खड़े होने, तो ये सिस्टम से मुसालहत कर लें, बस ये इतराज़ होता है। और मतलब खास तौर पर जैसे मार्क्सिस्ट हैं, तो मार्क्सिस्टों पे जो फेमिनिस्ट क्रिटिक है वो ये है कि मार्क्सिस्ट थॉट जो है ना जेंडर न्यूट्रल है।
अच्छा,
यानी कि मार्क्स ये कहता है कि भाई देखो एक्सप्लॉयटेशन होती है मजदूर, मजदूर औरत भी हो सकती है, मजदूर वगैरह जो भी होगा एक्सप्लॉइट, और ये जो कैपिटलिस्ट है वो एक्सप्लॉइट करेगा चाहे मर्द हो या औरत, इनके जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काले गोरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अपना हिंदू मुसलमान से फर्क नहीं पड़ेगा। वो मुसलमानों के खिलाफ वो है, लेकिन बहरहाल वो ये समझता है कि कैपलेस जो होता है असल आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस, जेन्युइन आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस या तो कैपलिस्ट होगा या लेबर, वो औरत हो मर्द हो काला हो गोरा इससे फर्क नहीं पड़ता। जब भी कैपिटलिस्ट होगा वो एक्सप्लॉइट करेगा ही, ये हो ही नहीं सकता कि नहीं करे, ये नहीं हो सकता, स्ट्रक्चरल है, एजेंसी का मसला नहीं। अब इसमें जो फेमिनिस्ट होंगे वो कहेंगे भाई ये क्या बात हुई, मजदूर भी जुल्म करता होगा अपनी बीवी के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर वगैरह वगैरह, वो भी रेप करता होगा, वो भी बदमाशियाँ करता होगा, वो भी औरतों को बेचता और खरीदता होगा। तो ये जो मर्द है, मर्द का है, तो कहते हैं भाई ये तो फेमिनिस्ट। तो फेमिनिज्म जब अटैक करती है तो वो ये कहती हैं कि भाई ये लोग मुसालेहत, यानी कि ये मुसालेहत कर ली, इन्होंने मुसालेहत कर ली कि भाई इनमें दम नहीं था और औरतों के लिए जिद्दोजहद करने का, और इनको कोई मर्द का सहारा चाहिए ही चाहिए था, तो उन्होंने अपनी आज़ादी को बेच दिया मर्द के हाथ में, या फैमिली के हाथ में।
दूसरा कि इसमें जो मतलब वो मतलब पहलू मतलब और भी है, एक तो ये कि मतलब जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है और इसके जो मतलब हैं लीडर, ये बड़े इनका एटीट्यूड जो है बहुत इंतहाई मुतशद्दिदाना है, बहुत ही ख्यारियत इनके अंदर, लेकिन अमलन नहीं है। इस तरह मर्द अगर करता है, अनार्किस्ट हैं वो होते हैं तो वो करके भी दिखाते हैं, इसकी क्या वजह, इसकी वजह जेंडर प्रॉब्लम है या कुछ और है? एक और दूसरा सवाल इसमें ये है कि मतलब फेमिनिस्ट जो है, मतलब जो इस्लामिक फेमिनिस्ट मूवमेंट जो चल रही है मलेशिया के अंदर, सिस्टर ऑफ इस्लाम वगैरह ये, और जो इधर भी हैं, तो वो अजहब के मामले में तो वो वोकल होते हैं कि मजहब ये करता है, या इस्लामिक फेमिनिस्ट मूवमेंट मजहब के बजाय फुका वगैरह को क्रिटिक करती है, पैगंबर तक नहीं आती, तो और वो जो मतलब जो सेकुलर हैं वो मजहब पे करते हैं, खुदा उदा को क्रिटिक नहीं करते, इसकी क्या वजह है? मतलब कि असलम तो प्रॉब्लम ये है कि जो औरत और मर्द में फिजिकल डिफरेंस है, यानी औरत ही को बच्चा पैदा करना है और औरत ही को दूध पिलाना है, ये अपरेटस तो यही मर्द के पास, तो ये डिस्क्रिमिनेशन तो स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन है बाय द गॉड, तो ये इस्लामिक फेमिनिस्ट भी और वो भी गॉड पे अटैक तो नहीं करते? ऐसे हमारे जो फेमिनिस्ट थी, आप जानते होंगे जो डीन फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज थी डॉक्टर रेहाना फिरदौस, कि एक किताब मैंने छपी थी हमारी यूनिवर्सिटी प्रेस, जिसमें इसने इस्लामिक फेमिनिज्म पर पूरी किताब लिखी थी, और उसमें इसने जो है पूरा बताया था, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो पहुँची हुई थी कि भाई रसूलुल्लाह ने कोशिश कर रहे थे लेकिन वो पूरी कंप्लीट हो नहीं सकी, और ये पूरा जो सहाबा वगैरह थे ये सब जो है डीन फेमिनिस्ट बनाते हुए थे वो, तो उससे मैंने पूछा लेकिन वो खुदा और रसूल बने, तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा कि ये आपने जो तनकीद की इसमें एक कमी है, मतलब यानी वो क्या, मैंने कहा इसमें एक कमजोरी है कि आपने जो है इसमें अल्लाह ताला को और पैगम्बरों को क्यों छोड़ दिया, यानी वो क्यों, मैंने कहा कि आपने ये पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने अपने लिए जहाँ भी सीगा इस्तेमाल किया, हुआ का सीगा इस्तेमाल किया जो मर्दाना सीगा है मतलब, और हिया का सीगा उसने इसमें इस्तेमाल किया, तो अल्लाह ताला तो खुद ही जो है मतलब एंटी फेमिनिस्ट है, तो खामोश हो गए इसको, तो क्यों नहीं जाते मतलब?
एक तो ये कि मुतशद्दिद क्यों नहीं होते, पहला ये मुतशद्दिद इसलिए नहीं होते कि फेमिनिज्म अब इंट्रेंसिकली ह्यूमनिस्ट है, और उसका जो बुनियादी एतराज है ना वो अगेंस्ट वायलेंस ही है, यानी कि उसूली तौर पर कहती है कि हम विक्टम हैं मेल एरोगेंस के, तो चूँकि हम विक्टम हैं लिहाजा हम हैं ही तशद्दुद के खिलाफ, तो हम तशद्दुद को तो नहीं पसंद करते, तशद्दुद
कर नहीं सकते,
नहीं कर तो सकते हैं, खैर ऐसा नहीं है, जैसे लग्जमबर्ग थी तो मतलब ऐसी अनार्किस्ट औरतें रही हैं जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त उनके घमसान की लड़ाइयाँ लड़ी हैं और मारी गई हैं लड़ते को, बड़ी मुतशद्दिद सख्त किस्म की, यानी कि लग्जमबर्ग तो कहती थी सबको कतल कर दो, और अमेरिकन जो मूवमेंट, यानी कि अमेरिकन बोल्शेविक रेडिकल्स थे अमेरिका के अंदर, उनको लीड जो कर रही थी औरत थी, उसको मैरी जो थी उसको डिपोर्ट किया बाद में अमेरिका, यानी कि धमाके करवा दी, सेनेटर्स को मरवा दी थी, धमाके करवा दी, सेनेटर्स मरवा देती थी, कतल करवा देती थी, लेकिन सबूत चूंकि नहीं था अमेरिकन स्टेट के पास, लिहाजा उसको मुल्क बदल कर दिया बाद में। जे एडगर जो था उसने उसको आइडेंटिफाई किया कि भाई ये जो जो लोग हैं जो बोल्शेविक रेडिकल्स हैं वो उनको हम आज़ादी दे सकते हैं, वो रहें, वो इनकलाबी फिक्र रखते हैं तो रखें, लेकिन ये कि वो तो स्टेट ही को नुकसान पहुँचा रहे, तो लोगों को मार रहे हैं, सेनेटर्स को मार रहे हैं, यानी कि सहाबियों को मार रहे हैं, पुलिस के लोगों को मार रहे हैं, तो फिर उन्होंने डिपोर्ट करना शुरू किया इनको पकड़ पकड़ के, यानी कि जिनके सबूत मिल गए उनको उड़ा ही दिया उन्होंने, और जिनके सबूत नहीं थे उनको डिपोर्ट किया। तो मुतशद्दिद तो औरतें हो सकती हैं, यानी कि तशद्दुद कर सकती, लेकिन फिलोसॉफिकली ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा फेमिनिस्ट डिस्कोर्स में। क्यों? इसलिए कि जो कम अज़ कम वेस्टर्न फेमिनिस्ट डिस्कोर्स है उसके अंदर वो तशद्दुद को बहुत बुरी चीज़ समझते हैं, लिहाजा अगर औरतें भी कोई तशद्दुद करें, जैसे इंडिया के अंदर जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है वो मुतशद्दिद है, तशद्दुद करती है, इंडियन जो मूवमेंट है फेमिनिस्ट मूवमेंट जो यूँ समझ लें कि न्यू लेफ्टिस्ट फॉर्म में है, ये मारती हैं पकड़ कर, ऐसा नहीं है पकड़ कर जूतियों से मारती हैं, मतलब बहुत सारी मिलती है, फोर्स बना लिए,
रेंडा फोर्स,
हाँ रेंडा फोर्स पहुंच जाते हैं, मारती हैं, लेकिन इसे जो वेस्टर्न जो जेन्युइन जो बड़ी जो ओरिजिनल थॉट है वो डिसओन करती है, वो ये पसंद नहीं करती, वो समझते हैं कि रूल ऑफ द लॉ होना चाहिए, और रूल ऑफ द लॉ ही वो समझती हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी है, तो रूल ऑफ द लॉ को हमें ठीक करना है, रूल ऑफ द लॉ डिस्क्रिमिनेटरी है इस वजह से हम ये करते हैं, लेकिन ये कि मार पिटाई अच्छी बात है, एक तो ये है कि वो तशद्दुद क्यों नहीं करती, दूसरी बात ये कि वो खुदा को क्यों नहीं करती। तो मुसलमानों के अंदर तो मैं ये समझता हूँ कि अभी वो मैच्योर, अभी वो मैच्योर होने के बाद इंशाल्लाह खुदा को भी नहीं छोड़ेंगे, मेरा कैसे अपने अंदर ही अंजाम हो गया, अगर तुम्हें कीचड़ी खाना तो चमचे से क्यों खाओ, बाटी से भर भर देगा ये क्या बात है, गुड़ खाओगे गुलगुलों का परहेज करो, वही नहीं ना, पूरा गुड़ खाओ शहद खाओ लगा लो अपने सर पे डाल लो खाओ। तो मेरा ख्याल है अभी वो मैच्योर नहीं हुई है, जब वो मैच्योर होगी तो डेफिनेटली ये क्लेम करेंगे, ये क्लेम करेंगे कि ये जो जैसे बाइबल पे ये इतराज कर चुके हैं कि बाइबल के जो मोस्टली जो लिखने वाले थे डायरेक्ट वो तो नरेटर, तो बाइबल के चूंकि नरेटर जो वो थे हवारियों जो थे वो सारे मर्द थे, लिहाजा उन्होंने बाइबल के साथ बाइबल को पैट्रियार्किकल कर दिया, साजिश के तौर पे नहीं, साजिश के तौर पे नहीं बल्कि हो गया उनसे पैट्रियार्किकल। अब हमारे फुका पे बिल्कुल एग्जैक्टली वही एतराज है जो फेमिनिस्टों का हवारियों पे, यही तो एतराज है उनका कि ये जो फुका थे ये सब मर्द हैं और ये मर्द है,
फिर भी मतलब ख्याल तो किया ना अल्लाह ताला को छोड़ के, अल्लाह ने ऐसा नहीं किया था, ये इन्होंने तहरीफ कर दी, लेकिन जो आपकी है ना स्ट्रक्चरिंग जो अल्लाह ताला ने की है वो तो खुद ही डिस्क्रिमिनेटरी है।
नहीं अब उसमें वो आर्ग्यूमेंट ये करेंगे, फर्ज करें कि एक तो ये कि अभी वो गॉड के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा, मसला ये है कि गॉड ऊपर से नीचे तो आता है नहीं, विलियम जेम प्रैग्मेटिक प्रैग्मेटिकली वायबल नहीं है ना कि आप गॉड को चैलेंज कर दो, तो मारेंगे ना लोग, अब सर्वाइव ही नहीं कर सकते, अगर आपने गॉड को ही अटैक कर दिया तो इसका मतलब है आप फारिग हो गए ना, फारिग हो गए आप, ईसाइयों से भी फारिग हो गए डिसो, आप कम्युनिटी के अंदर एलियन हो जाओगे, कम्युनिटी के लिए एलियन हो जाओगे तो कम्युनिटी के अंदर काम कैसे करोगे, औरतें ही डिसोन कर देंगी, देखो ना औरतें भी तुम मोहब्बत करती है ना पैगंबर से और सहाबा से, और तो वो जो है यानी कि एब्सोल्यूट रिजेक्शन जो होती है ना वो काउंटर प्रोटेक्टिव होती है हमेशा, यानी कि शैतान हमेशा जो हमला करता है ना वो खुल के हमला नहीं करता, कभी अपनी तरफ कभी नहीं बुलाता शैतान, खुदा की दावत में और शैतान की दावत में दुनिया भी बड़ी है, शैतान हमेशा अपने अलावा किसी और चीज की तरफ बुलाता है और खुदा अपनी तरफ, तो जब हम शैतान की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम असल में जा रहे हैं इस चीज की तरफ, शैतान की तरफ नहीं जा रहे, ठीक है हम चीज की तरफ जा रहे हैं, और जब खुदा जो कि डायरेक्ट बुलाता है, हम कहते हैं हम खुदा की तरफ जा रहे हैं इस चीज के जरिए। तो दोनों चीजों में शैतान की तरफ जाओ या अल्लाह, उठाते फायदा चीज है, ये कमजोरी बुनियादी कमजोरी के शैतान अपनी तरफ बुलाते नहीं, कहता मेरी तरफ नहीं, बोलता देखो मैं तो कहता हूँ कि तुम अच्छा खाओ पियो, अशिया की तरफ बुला, तो आप कहें मैं शैतान की तरफ थोड़ी जाओ, जाने का ये जरिया है कि मैं अच्छा खाऊंगा पीऊंगा तो मैं अल्लाह की सही तरह इबादत कर सकूंगा ना भाई, कि मैं अल्लाह की तरफ जाने के लिए ये चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो दोनों चीजों में चीज ही की तरफ जाते हैं।
भोगा भी वो अल्लाह ही के नाम पर देगा, आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने दिया।
तो बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है कि फेमिनिस्ट पाकिस्तान के अंदर जो फेमिनिस्ट मूवमेंट, पता नहीं उसका नाम क्या है, उसके बाल छोटे छोटे से औरत है और टेलीविजन में एकदम से वो आई थी काफी, उसका गायब हो गई शरब के जमाने में आनी शुरू हुई, उसका नाम मुझे नहीं पता नहीं क्या नाम, तो वो कहती है कि सारी तफासिर गलत हैं, सब तफासिर गलत लिखी हुई हैं उसकी, तो इस वजह से जो है वो ये औरतों के साथ मुझे माशरे के अंदर हुआ, लेकिन वो ज़ाहिर अभी अल्लाह ताला और पैगम्बर को वो ठीक से बड़ी जुम्मा समझती है। और
वहाँ जो मतलब मगरिब के अंदर जो फेमिनिस्ट हैं उनमें कोई ऐसा नहीं है, मतलब यानी कि जो एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन करें, मतलब यानी मसले असर नहीं करते, करना भी चाहें तो यानी हालात पर जबर है उनके ऊपर।
नहीं मैं मेरी नज़र से नहीं, मैंने तो ब्राइन डॉटी एग्री और स्टैबा वगैरह को देखा और ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा, हो सकता है मेरा ये ख्याल है कि नेचुरली वेस्ट के अंदर तो होंगी ऐसी जो देखें, अगर देखें गॉड पर अटैक करना काउंटर प्रोडक्टिव है फिलोसॉफी, फर्ज करें कि अगर एक औरत इस दलील को बुनियाद बनाकर कि मैं बच्चे क्यों पैदा करती हूँ गॉड को क्रिटिसाइज करें, तो असल में वो अपने औरत होने की नकी करेगी, तो फिर फेमिनिज्म भी था, फेमिनिज्म तो सेलिब्रेट करता है बीइंग वुमन, इसलिए वो ये एतराज़ उठाकर अल्लाह ताला पे क्रिटिसिज्म कर नहीं सकती। मैंने ये पढ़ा नहीं है, मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूँ, ऐसा मेरा ख्याल है कि वो औरत होने पे फ़ख्र करती है और सेलिब्रेट करती है और अपने बच्चा पैदा करने की सलाहियत पे मेरा ख्याल है कि उसे फ़ख्र करना चाहिए रैशनली।
लेकिन फ्रीडम के तो रैशनली तो ये फ्रीडम के डिस्कोर्स के बनाती और औरत का बच्चा पैदा करना, मतलब अगर एक औरत के 8 बच्चे हैं और 16 हवाते हैं और 17 पोते हैं तो उसकी आज़ादी कैसे मुमकिन हो?
उसकी आज़ादी का मसला ये है कि बच्चा पैदा करने की उसकी सलाहियत और मर्दों का 8 बच्चे पैदा करने पे उसको मजबूर करना, ये है इशू, ये नहीं कि वो बच्चा पैदा कर रही है, सवाल ये कि वो बच्चा पैदा करवा रही है मर्द के पैट्रियार्की की वजह से, अगर वो अपनी मर्जी से ये कर रही हो तो वो 8 बच्चे पाल लेगी, इट्स नॉट अ बिग डील, इशू ये है कि वो 8 बच्चे उसके ऊपर थोपे जाते हैं,
उसकी फ्रीडम तो होनी चाहिए,
उसकी फ्रीडम,
अगर उसकी फ्रीडम ना हो तो ये इर्रेशनल
है। और अगर फर्ज किया कि उसकी फ्रीडम वायलेट होती है तो फिर उसके पास अबॉर्शन का राइट भी होना चाहिए, तो बच्चा पैदा करना डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है उसके लिए, मेरे ख्याल में सेलिब्रेटिंग है। मसलन ये कि मैंने ये बात फेमिनिस्ट देखे हैं डिस्कोर्स जिसके अंदर वो ये कहती हैं कि भाई मर्द जो है वो तो सस्टेन ही नहीं कर सकता ह्यूमन जनरेशन ऑन हिज ओन, लेकिन औरत ऑन हिज ओन सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि अगर जो स्पर्म बैंक मौजूद हो और मर्द एक भी दुनिया में मौजूद ना रहे तो बस फिर भी इंसानियत सर्वाइव करेगी और अकेली औरतों की मदद, लेकिन स्पर्म सेल मौजूद हो लेकिन औरतें ना तो नहीं हो सकती, तो औरत होना जरूरी है, भैंस अच्छी होती है बैल से, मुर्गी अच्छी होती है मुर्गे से, और औरत होती है अच्छी होती है मुर्गे से और मर्द मर्द से, ये ना
ठीक,
तो उसकी वो तो इसको स्ट्रेंथ के तौर
फिलोसॉफिकल फाउंडेशन इसकी
नहीं
वैसे
नीचे ये कहता है कि औरत को जब भी मौका मिलेगा वो कभी औरत नहीं बनना, मर्द पसंद आपको चॉइस मिले अगले जन्म में क्या बनना पड़े, तो वो कहता है मर्द ऑलवेज गो फॉर मे, ही ऑलवेज गो फॉर मे, बट वुमेन विल ऑलवेज गो फॉर मे. वो कहता है डीप इनसाइड वो नफरत ही है.
वो मर क्यों बनना चाहिए, जब वो एक चीज से नफरत करती है तो वो उसी को क्यों त्याग करना
चाहिए, नहीं करती,
अफसोस करती कि वो पावर मेरे पास नहीं.
हाँ वो मेरे पास है. नीचे का ये कहना
कि जो पृथ्वी और जो मेल साइड ऑफ लाइफ है उसी को आइडियलाइज
कर रही है ना. नीचे ये निचे कहता है कि उसकी वजह औरत मर्द नहीं, उसकी वजह पावर है. वो कहता है पावर ही वैल्यू है, सब पावर को वैल्यू करते हैं, सब पावर को वैल्यू करते हैं, जानवर भी, जानवर भी पावर को वैल्यू करते हैं, जुल्म को राम राम. ये निचे का थी वो क्वीन के पास था ना. अब क्वीन ने चार्ल्स को नहीं बनाया, चार्ल्स के जो रवैये थे उसमें खतरा था, कभी लगता था कि रिलीजियस साइड पे ना चला जाए, कहीं कन्वर्ट ही ना हो जाए. बीवी को अपने काबू नहीं कर सका, दुनिया में जगह आई और अपने सलमान के साथ रिलेशनशिप रख ली है. तो क्वीन ने कहा भाई ये तो भाई आदमी नहीं है, इसको नहीं बनाया जा सकता, बादशाह की तरह नहीं है. ये कैसे हो सकता है बादशाह मुस्तकबिल, बादशाह मुस्तकबिल का बादशाह और अपनी बीवी को काबू में रख सके. तो उनका चार्ल्स तो स्टफ नहीं. अब ये वाला जो है ये उसको लगता है कि भाई ये स्टफ है, उसकी बेटा ही नहीं. तो चार्ल्स को शहजादा ही रहेगा. अब चार्ल्स का बेटे का बेटा जो है वो यानी कि थॉर्न की कॉन्टिन्यूएशन की गारंटी भी आ गई है, तो शायद उसको मिल जाए बादशाह. और मेरे ख्याल में वो थोड़ा वो भी ज्यादा है, और ईसाइयत की तरफ उसका झुकाव भी ज्यादा है. और ये भाई के साथ उसका जो रवैया हो वो रहने के लिए बेहतर भी हो. अच्छा जी, आज हम कुछ करना, हम आज हम ये करना चाहते हैं, हम जो रेडिकल कन्फॉर्मिज्म अगर हमने तीन सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट अब तक बताए, वो क्या हमने बताया तीन सपोर्टिंग. हमने एक सेशन एक चीज पे किया, दूसरा सेशन दूसरी पे, अब ट्रस्ट जो है वो बेसिकली ट्रस्ट का जो इशू है वो रेस क्यों हो. ठीक है, फ्रीडम का एक खास किस्म का रिलेशनशिप होता है नॉलेज के साथ और इग्नोरेंस के साथ. अगर आप फ्रीडम की जो बहस है उसको देखें, यानी कि क्लासिकल बहसें भी देखें, फ्रीडम और डिटर्मिनिज्म की बहसें, अगर मुसलमानों की ही बहस ले लें तो मुसलमानों में एक जबरियाइट्स हैं और एक खारिजियाइट्स हैं. एक कहते हैं कि भाई इंसान अपने चॉइस में आजाद है, और खारिजियाइट्स या कबरियाइट्स, और जबरियाइट्स ये कहते हैं नहीं, हर चीज पहले से तय है, अल्लाह ताला ने तय कर दी. अब हम इस आर्गुमेंट से इसलिए चल रहे हैं कि आगे हम फेमिलियर हो सकें कि ये बहस कोई बाहर की नहीं, हमारे अंदर की भी बहस है. अब इसके अंदर जो मोतजलाइट की पोजीशन है वो ये है कि खादियाइट की पोजीशन है, वो ये कहते हैं कि देखो भाई अगर आपके पास चॉइस ही नहीं होगी तो सजा किस बात की, सजा किस बात की. अगर ये तय, अगर ये पहले से तय है तो आपकी हैसियत बन जाएगी पपेट ऑफ गॉड. जब आप पपेट ऑफ गॉड हैं तो आप तो वही कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने किया कहा है, तो आपको किस बात की सजा. अब जबरिया इसलिए कहते हैं कि भाई अच्छी खुदा की मर्जी तो इससे इम्प्लीकेशन ये निकलती है कि फिर इंसान तो पपेट ऑफ द गॉड है। तो जब ही आई से आर्ग्यूमेंट देते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग, वो ये कहते हैं कि देखो पहले से खुदा ने तय कर दिया है या खुदा को पहले से पता है कि तुम क्या करोगे, इससे ये कहाँ से इम्प्लाई होता है कि तुम्हारे पास चॉइस नहीं। चॉइस का ताल्लुक अवेयरनेस से होता है। फर्ज करें कि अगले लम्हे मैं मेरे साथ क्या होने वाला है अल्लाह ताला को पता है, तो इससे क्या ये पता चल गया कि मैं डिटर्मिंड हूँ, या इससे ये पता चला कि अगले लम्हे जो होने वाला है खुदा उससे आगा है, लेकिन अगले लम्हे क्या होने वाला है मैं उससे आगा नहीं, मैं खुद तो आगा नहीं। तो खुदा ने नॉलेज जो है ब्लॉक कर दी है मेरी फ्यूचर, और पसंद भी नहीं करता कि फ्यूचर की नॉलेज में जा गए। इवन पैगंबर को भी बहुत सारी फ्यूचर की नॉलेज नहीं देता। तो फ्यूचर की नॉलेज का ना होना दरअसल गारंटी करता है तुम्हारी चॉइस को। वो कहता है भाई जब तुम्हें ये पता ही नहीं है कि अगले लम्हे क्या होने वाला है तो फिर तो तुम कोई भी चॉइस ले सकते हो ना, नतीजा वही होगा जो अल्लाह ने चाह रहा है। लेकिन फ्रीडम तुम्हें है चॉइस लेने की, उसकी मीनिंग ये है कि तुम्हारे पास फ्यूचर की नॉलेज है। फ्यूचर की नॉलेज ना होने की वजह से हम अगर पहले से तय शुदा भी है फ्यूचर तो भी तुम्हारे लिए तुम्हें तो पता नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं है जो मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। कि तुम्हें जो सजा और जजा मिलेगी वो तुम्हारे चॉइसेस पे बताई के ऊपर थोड़ी मिलेगी, तुम्हें सजा मिलेगी। अगर तुम्हें ये पहले से पता तुम्हारे साथ क्या होने वाला है तब तुम बनोगे ना पापड़, तो तुम्हें चॉइस दे दी ले करो चॉइस। लेकिन तुम्हें फ्यूचर पता ही नहीं है अगला लम्हा क्या होने वाला है, तो इसकी बुनियाद पे तुम्हारा फैसला होगा। इसका मतलब ये हुआ कि चॉइस का एक खास किस्म का ताल्लुक ये अंदर की। अब उनकी जनरल
और अहम ऐसे
ये बहुत बहुत ये बहुत मुश्किल आर्गुमेंट है और ये बहुत ही सिंपल मैनर में वो डिस्कस किया है मैंने। मसला ये है कि मुझे ये पता नहीं है अगले लम्हे क्या होना है, तो अल्लाह ताला ने मुझे आज़ादी क्या दी है, मुझे इग्नोरेंस के जरिए दी है, मुझे मुस्तकबिल मेरे से छुपा दिया। पर से अगले लम्हे में मरने वाला हूँ, अगर मुझे पहले भी पता हो एक लम्हे बाद में मरना हो तो इस लम्हे जो मैं पूरे कॉन्फिडेंस और शिद्दत के साथ जो कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता हूँ दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, सोच सोच के रूल पना होती रही अगले लम्हे मुझे मरना है मरना है मरना है। तो खुदा ने ये मुझ पर रहम किया है कि मुझे ये नहीं बताया कि अगले लम्हे में
दूसरा कि ये मतलब अगले लम्हे जो आप भरने वाले हैं तो उसके अंदर भरने का कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे ये आपके ऊपर है, यानी आप खुदकुशी करेंगे या आप इलाज करवाएंगे डॉक्टर से या आप कहेंगे मुझे इलाज नहीं करवाना है जो मेरी तकदीर में मैं करूंगा, ये सारी चॉइसेस आपको दे रहे हो, मतलब आजादी कहाँ से आपकी
है। पहली बात तो ये कि खुदा ने अगर आपके इख्तियार को डिटरमिन किया उसने इख्तियार दिया है, लेकिन उसने मुस्तकबिल में उस इख्तियार के नताइज छुपा दिए कॉन्सिक्वेंसेस, इसीलिए वो पसंद नहीं करता कि लोग मुस्तकबिल में जाके। अब इंसान को देख लेते हैं, फ्रीडम जो ड्रिवन माशरे होते हैं वो सारे के सारे फ्यूचरिस्टिक होते हैं। जैसे लाउत्सु कहता है कि इफ यू आर एंशियस दैट मीन्स that you are living in future. If you are miserable, that means that you are living in past. But if you are in peace, means that you are living in present.
choices के बारे में कुछ और
हाँ मैं अभी इसी पे करूँगा। आप बताएं क्या कोई डायरेक्ट डायमेंशन
हमारे माहौल मुआशरा जेंस और हमारी जेनेटिक्स इतनी सारी बाइंडिंग है वो इस तरह भी देख रहे हैं
क्योंकि इसके अंदर फूड और मतलब ईविल की वहां से एलिमेंट होगी वहां पे
फ्रीड एंड चॉइस
जो उसमें है जो फूड और ईविल की बहस है फलसफे के अंदर
जी जी उसका भी डालू है लेकिन अभी दरअसल हम मैं फोकस करना चाह रहा हूँ मैं इस फ्रीडम नॉलेज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द फ्यूचर और ट्रस्ट इन तीनों के दरमियान में लिंक बनाना चाह रहा हूँ और वो ये बताया जा रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर जो लोग आज़ाद चॉइस लेना चाहते हैं लाओ त्सू ये कहता है कि भाई अगर आप फ्यूचर में रहेंगे ना फ्यूचर में रहना चाहें तो आप हमेशा एंक्शस रहेंगे आपकी जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होगी उसमें बेकली होगी वजह क्या है कि फ्यूचर डिटर्मिनेट नहीं होता इनडिटर्मिनेट होता है क्योंकि वो इनडिटर्मिनेट होता है लिहाजा अगर आप फ्यूचरिस्टिक हैं तो आप को हमेशा ये तड़प रहेगी कि कहीं मुस्तकबिल में मेरे प्रोजेक्शन के बरखिलाफ कुछ ना हो तो बुनियादी तौर पर इंसान जो फ्यूचर में रहना चाहता है वो बुनियादी तौर पर क्या हासिल करना चाहता है नॉलेज ऑफ द फ्यूचर जो कि गॉड की ट्रेड है फंडामेंटली और जो गॉड ने इंटेंशनली नहीं दिया मतलब कुरान के अंदर बहुत सारी जगहों पे एक्सप्लिसिटली कहा है कि मैंने नहीं दिया मैंने गैब का नहीं दिया छुपा लिया है क्यों बार बार वो कहता है कि इसके नतीजे में तुम्हारा चॉइस लेने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है यानी कि अगर जैसे हम ईडिपस की एग्जांपल लें ईडिपस जो है वो जब पैदा होने वाला था तो उसके बाप को नजूमिया ने बताया कि भाई तुम्हारा जो बच्चा है वो बड़ा खबीर बच्चा होगा वो पैदा होने के बाद तुम्हें कतल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा ईडिपस ने कहा भाई ये तो खबीर सुनी बता इतनी खबीर अच्छा भाई अब जब बच्चा पैदा हुआ तो उसने कहा भाई इसका कतल कर जो आदमी उसको कतल करने के लिए लेके गया बच्चे को उसने बच्चे को देख के उसकी हिम्मत नहीं हुई छोटा सा बच्चा तो उसने बच्चे को जंगल में छोड़ दिया इसे कोई भेड़िया खा जाएगा और उसके कपड़ों में खून लगा के बाप को दिया वहां पे दूसरी फौज का बादशाह जो तो दूसरे मुल्क का बादशाह है वो ईडिपस को लेके उसकी औलाद नहीं कोई तो उसने कहा कि ये मेरा किसी को पता नहीं चलेगा और माँ और बाप बन के उसको पाला उन लोगों ने और वो जवान है और चूंकि वो रॉयल ब्लड ही था इसलिए बादशाहों जैसा ही था तो किंग भी खुश क्वीन भी खुश ईडिपस भी खुश तो बाप ने कहा कि भाई मैं अपने बेटे की अपनी जिंदगी में ही ताजपोशी करूँ ताजपोशी से पहले उसने ईडिपस ने फिर नजूमियों को बुलाया नजूमियों ने कहा कि तुम अपने बाप को कत्ल करोगे और अपनी माँ से शादी करोगे उसने कहा मैं आई विल स्ट्राइक बैक अगेंस्ट माई फेट मैं अपने अपनी तकदीर को शिकस्त दूंगा मैं ऐसा नहीं करूँगा आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट ये मुझसे कोई नहीं कर पा लिहाजा उसने क्या किया उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया क्योंकि वो तो असल माँ बाप उन्हीं को समझता और जंगलों में रहने लगा जंगलों में रहना है तो उसके अरीब करीब जो बारबेरियंस थे वो उसके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो क्यों क्योंकि ये बड़ा वॉरियर था और उसके मुकाबले में कोई टिक नहीं सकता था इसलिए उन्होंने उसको अपना सरदार तस्लीम कर लिया और अपना बादशाह बना लिया तो उसने कहा चलो ठीक है मैं बारबेरियंस के साथ ही रहूँगा इनकी जो बारबेरिक स्टेट थी उसके ऊपर इनके असल बाप ने हमला कर दिया बादशाह था, डिफेंड करने गया अपने अपने इलाके को, और जंग में उसने अपने बाप को कत्ल कर दिया। और एज एन ऑनर बादशाह की बीवी उसको मिली, रायरंग उसकी बीवी मिली। इसलिए नहीं कि वो कोई लुटेरे खातिल होते हैं, इसलिए कि बादशाह की क्वीन डिजर्व किंग, इसलिए रूल था लिहाज होते हैं। बाद में से पता चला ये उसी के वाला है। अब ये जो एग्जाम्पल है ये नॉलेज का इशू है। देखें जैसे ही उसके बाप को फ्यूचर के बारे में पता चला तो उसने क्या किया, उसने उसका चॉइस तय हो गया, चॉइस उसका तय हो गया। चॉइस क्या तय हो गया, चॉइस ये तय हुआ कि मैं अब इस बच्चे से जान छोड़ा फ्यूचर से। जैसे ही तुम फ्यूचर को पता चलोगे ना, चॉइस तुम्हारे पास कम हो गई। उस अहम तौर पे लोग जो फ्रीडम की कोशिश करते हैं या फ्रीडम हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो समझते हैं कि फ्यूचर का पता होने के बाद हमारे चॉइसेस बढ़ जाएंगे। हालांकि फ्यूचर पता चलते ही चॉइस एक हो जाता था, यानी कि इनफैक्ट टेक्निकली योर चॉइस अबैंडन, चॉइस खत्म हो गया हमारे। जबकि फ्यूचर जब नहीं पता होता तो तुम्हारे तुम्हें पता ही नहीं होता मैं क्या करूँ, तो वहां पर तुम्हें करना होता है अकॉर्डिंग टू द स्प्रिट ऑफ द कॉन्शियसनेस, अपने अपने जमीर की या अपने खुदा की या जिस चीज को भी तुम सोचो उसकी बुनियाद पे फैसला करना है। समझे आप? तो उसने क्या किया, बाप को जब यह पता चल गया था कि भाई ये मेरा बच्चा मुझे कत्ल करेगा और मेरी अपनी माँ से शादी करेगा, तो उसने बच्चे को कत्ल करने की कोशिश क्यों की, अपनी बीवी को क्यों नहीं कत्ल कर दिया? ये भी तो कर सकता था, ये भी एक चॉइस, अपने आप को कत्ल कर लेना। हिंदू जो माइथोलॉजी है उसके अंदर ऐसा ही है कि एक औरत जो क्वीन थी उसने बादशाह, यानी कि जो क्वीन थी और कोई राजपूत क्वीन थी, और उसको ये पता चला कि मेरा शौहर मेरे से वो है बेवफा है, बेवफाई कर किसी और औरत के साथ। उसने जब बच्चे की पैदाइश होने वाली थी उसके, तो उसने ये कसम खाई कि मैं अपने शौहर का गोश्त खाऊंगी, नफरत की, और उसने वो नफरत पाली, नफरत पाली, नफरत पाली, नफरत पाली, और उसका जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली नफरत थी अपने बाप। अच्छा, बाप का जाहिर है वो इकलौता बेटा, तो बाप बहुत मोहब्बत करता था अपने बेटे को, तो बाप के से वो मोहब्बत भी करता था बेटे, लेकिन बाप को अजियत पहुँचा के उसे खुशी होती, तकलीफ पहुँचा के खुशी होती। तो बचपन से वो अजियत पहुँचाता रहा बाप को, लेकिन बाप ने हमेशा, चूंकि बाप को मोहब्बत करने वाला ग्रेसफुल बाप था, इसे वो बर्दाश्त हुआ। एक दिन जब वो बच्चा जवान हुआ तो बाप को पकड़ के बन गया, और रोजाना जो है कोड़े मार, और कोड़े मार के रोता था कि मैं कोड़े मारता क्यों, बाप की भी समझ में नहीं आता। बाप को दो दुख थे, तो ये कि बेटे ने ये मेरे साथ किया, दूसरा ये कि मुझे क्यों मारता है, और मुझे मारता है तो रोता शुरू, एक साइकोलॉजिकल सिकनेस का शिकार था बेटा। उसके बाद उसकी बीवी माँ तो खुश थी कि बच्चा हुआ, उसके बाद जो है माँ को ये पता चला कि जो इल्ज़ाम वो अपने शौहर के ऊपर रखती थी वो बेकसूर था, उसकी इंफॉर्मेशन की गई। तो वो जिस बुनियाद में नफरत थी, वो नफरत की बुनियाद ही उसे बड़ा एहसास हुआ। एहसास होने के बाद उसने अपने बेटे को बताया कि मैंने ये अहद किया था कि मैं अपने शौहर का गोश खाऊँ, तो मैं मुस्तकिल नफरत करती रही तो वो तुम्हारी हड्डियों में उतर गई। तुम्हारा बाप बहुत अच्छा आदमी और तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, और तुम्हारी तुम्हें जितना ही मैंने अपने बाप के खिलाफ भड़काया वो सब गलत फहमी की होगी। तो बेटे को एहसास हुआ तो जाहिर उसके गिरा भी खुल गई, अच्छा ये वजह थी कि मेरी माँ की नफरत मेरे अंदर आ गई, तो वो आज़ाद हो गया। उससे उसने तलवार लेकर दरवाजे यानी खुलवाते हुए और तालों को काटते हुए अंदर लग गया। बाप ने कहा तलवार ही लेके आ रहा है आज तो। उसने कहा अच्छे कतल ही ना कर दे। उसने कहा अगर मुझे खत्म कर देगा तो फिर मारे मार के सुकून किससे मिलेगा, और सारी जिंदगी अपने आप को शायद आज मुझे मार के रोता है, कल को मुझे खत्म करके अपने आप को भी खत्म कर ले। तो बाप ने कड़ी गर्दन में घुमा के गर्दन तोड़ दी। तो बाप वो भी बाप है, ये भी बाप, एडिपस भी बाप, वो भी बाप, वो भी बाप है, ये भी बाप है, दोनों बाप है, और दोनों अपने बेटों की तरफ रवैया। तो सवाल ये है कि उस बाप को चॉइस का नहीं पता था, इस बाप को चॉइस। जब आपको चॉइस का पता चले तो भाई आपने अपनी अपने आप को क्यों नहीं मार लिया। इसका मतलब है कि जब हम चॉइस फ्यूचर को झांक रहे होते हैं तो हम फ्यूचर को अपने लिए मोल्ड कर रहे होते हैं, अपने इंटरेस्ट में, वॉन्ट टू बिकम गॉड ऑफ द फ्यूचर, दैट क्रिएट फ्रीडम कॉन्शियसनेस, दैट क्रिएट एक स्टेट ऑफ फ्रीडम। यानी फ्रीडम का मतलब ये है कि मैं रूल करूं अपने फ्यूचर, यही है फ्रीडम। फ्यूचरिस्टिक होती है, जब तुम कोई फ्रीडम को हासिल कर ले तो वो कंज्यूम हो जाती है। इट ऑलवेज टेंडिंग टुवर्ड्स समथिंग अदर देन इटसेल्फ, फ्यूचरिस्टिक होती है फ्रीडम, समझा। और फ्यूचरिस्टिक होने का मतलब ये होता है कि आप फ्यूचर को अपनी मर्जी का चॉइस से डिटरमिन करें। लिहाजा फ्यूचरिस्टिक होना और फ्रीडम का होना एक ही चीज के दो नाम,
ठीक है।
लेकिन ये ख्वाहिश या ये हुसूल है आगही है मुस्तकबिल हर एक के बस की चीज नहीं होती, हर एक के बस में नहीं होती, हर एक के पास उसका इल्म नहीं होता। तो उसके लिए आपने डेवलप की मेटाफिजिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, जो आपको प्रोजेक्शंस बनाते हैं, जो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, जो आपको स्टेटिस्टिकल डाटा और एनालिसिस बनाते हैं, जो कंसिस्टेंटली प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर, जो मैनेज करता है आपके फ्यूचरिस्टिक कॉन्सिक्वेंसेस को बाय वर्च्यू ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट, और दुनिया के काबिल तरीन लोग और दुनिया के हाईएस्ट पेड जो लोग होते हैं वो रिस्क मैनेजर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के हाथ में चॉइस होता है जो फ्यूचर में तुम्हें फ्रीडम ग्रांट करे, और उनका गलत चॉइस है जो 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 कार्टल्स के ऊपर बेटिंग करते हैं, जो जॉन स्टॉक के म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं, ये अगर गलत फैसला कर ले तो पूरे के पूरे जो इन्वेस्ट जिनके भी पैसे लगे सब डूब जाएंगे। जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट डिसीजंस कर रहे होते हैं, इनके गलत फैसलों के नतीजे में मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर इधर उधर हो जाते हैं। तो ये एक पूरा इल्म है, ये एक पूरी फील्ड है, और इसके जो लोग होते हैं ये हाईएस्ट पेड पीपल इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट पेड पीपल इन द वर्ल्ड। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि वो फ्यूचर के अंदर होने वाले चॉइसेस को डिटरमिन करते हैं, और उसका इम्पैक्ट फैक्टर ये होता है कि वो हजारों नहीं लाखों और करोड़ों इंसानों के फ्यूचर चॉइसेस को अफेक्ट कर सकते हैं और इन्फ्लुएंस कर सकते
हैं। इसमें हमें जो सवाल है वो ये कि ये कंट्राडिक्शन इसमें महसूस हो गया है गुफ्तगू के अंदर। आपने ये कहा कि जब आदमी को अपना मुस्तकबिल मालूम हो जाए फ्यूचर, तो उसकी चॉइस जो है कम हो जाती है, और वो जो है, और अगर उसका फ्यूचर मालूम हो तो उसकी चॉइसेस बढ़ जाती है। लेकिन जो मतलब एडिपस की जो एग्जाम्पल आपने दी है, अगर हम इसका एनालिसिस करें जो आपने भी कुछ किया है, उसमें तो ये मालूम होता है कि फ्यूचर मालूम होने के बावजूद भी च्वाइसेज रहती हैं। मिसाल के तौर पर आपने खुद बताया कि वो खुद को भी खत्म कर सकता था, वो अपनी बीवी को भी खत्म कर सकता था, वो ये भी कर सकता था कि वो तीनों जो है मतलब मर जाते, इस तरह और भी च्वाइसेज हो सकती हैं। तो उसने इन सारी च्वाइसेज में से एक स्पेसिफिक च्वाइस क्यों ली,
इसलिए ली कि जिस वजह से उसने फ्यूचर में झांका था वो खुदा बनने के लिए, तो झांका खुदा अपने आप को कैसे मार लेगा, मैं खुदा हूं ना आपकी दुनिया में, मैं ही मर जाऊंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा, फ्यूचर में झांकने वाला खुद नहीं मरता, मारता है। वो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ही डिफरेंट है, वो तो शैतान के रास्ते पे चल रहा है, वो कह रहा है मैं शैतान बन, अगर वो गॉड का क्रिएचर होता और नहीं करता। चॉइस जब आप लेते हैं ना, जब आप फ्यूचर में झांक लेते हैं, तो वो जो आपको मिलने वाली अवेयरनेस होती है वो ऑटोमेटिकली डिटरमिन करती है, नॉलेज आपके चॉइस को डिटरमिन करती है, नॉलेज आपके चॉइस को डिटरमिन कर देती है, इग्नोरेंस आपको चॉइस देती है। इट्स नॉट द नॉलेज विच गिव यू चॉइस, इट्स द इग्नोरेंस विच गिव यू चॉइस। जब उसको पता चल गया भाई मैं बगैर देखे मक्खी खा देता हूँ, लेकिन देख के मक्खी निकलना बड़ा मुश्किल होता है,
तो फिर ये तो मतलब जो आपका जो मतलब आर्गुमेंट है फ्रीडम के हवाले से, तो ये तो एस्टेब्लिश होता है कि यानी फ्रीडम का मतलब ये कि इंसान खुदा बन गया है, और फ्यूचरिस्टिक होने का मतलब ये कि खुदाई को जो खतरात हो सकते हैं उनको वो ख़त्म कर दे थ्रू रिस्क मैनेजमेंट।
बिल्कुल, रिस्क मैनेजमेंट, एग्जैक्टली, ये हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इग्नोरेंस को लैक ऑफ फ्रीडम के तौर पे लें और नॉलेज को एक्सटेंशन ऑफ फ्रीडम के तौर पे। तो अगर आप चाहते हैं फ्रीडम बढ़े तो आप बढ़ाएं नॉलेज। नहीं, ये तो हम इतराज करें, लेकिन जो मुस्तकबिल में झांकने वाले हैं उनके पर्सपेक्टिव से वो चाहेगा मुझे मुस्तकबिल के बारे में पता हो, हर चीज़ पता चल जाएगा। जैसे आयरेटोलॉजी, अब व्हाट इज आयरेटोलॉजी, आयरेटोलॉजी ये बताती है कि आपकी आयरिस का जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा आपके ब्लूप्रिंट है, आप मुस्तकबिल में क्या क्या करें, आपको कौन सी बीमारियां हो सकती है, आपकी तशद्दुद के इम्कान कितने हैं, वगैरह 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 वगैरह, वो पूरा स्ट्रक्चर है आयरेटोलॉजी का। अब आयरेटोलॉजिस्ट जो होगा वो दरअसल तुम्हें बनाएगा ही हर वो बात जो मुस्तकबिल से मुताल्लिक है। अब अगर वो मुस्तकबिल से ही मुताल्लिक तुम्हें बता रहा है तो मुस्तकबिल तो होने वाला है ना तुम्हारे साथ, तुम पहले से क्यों पूछ रहे हो, तो आप कहते हैं मैं कुछ और कर लूंगा का मतलब ये कि मैं ये नॉलेज लेकर अपनी खुदाई को लाहक खतरात दूर कर लूँ, नॉलेज जो है वो मेरी आज़ादी के लाख खतरात का को काउंटर करने का वाहिद काबिल अमल बन गया। पूरी दुनिया में कंसेंसस है, पूरी दुनिया का जो इल्म है वो फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन जितना ये यानी कि जो ऑब्सेशन है फ्यूचर को जानने की और फ्यूचर में झांकने की बड़ी है, उसके साथ साथ एक और एहसास भी बढ़ा है बहुत शिद्दत के साथ, जहालत मुस्तकबिल के ना होने, मुस्तकबिल को ना जानने की जहालत। तो आप देखें जब आप फ्यूचरिस्टिक हो जाएं और आपको यही पता है कि फ्यूचर को मैं झांक नहीं पा रहा हूँ या देख नहीं पा रहा या मुझे पता नहीं चल पा रहा, तो उसके नतीजे में आपको क्या होगा, एहसास होगा कि आप आज़ाद, और सारा गुस्सा जो हमारे यहाँ लोग उतारते हैं वो अल्लाह ताला के ऊपर उतारते हैं कि हम ये बेबस मखलूक और अल्लाह ताला ने हमें क्यों नहीं दिया। भाई अल्लाह ने तुम पर रहम किया, अल्लाह ने कब कहा फ्यूचर में झांकते हो, कहा है अल्लाह ताला ने, मना किया है ना उसने, मना किया है कि तुम नहीं करो ये, अच्छा तुम झांकना चाह रहे हो चलो भाई झांक लो, तो फिर तुम उसे खुदा को क्यों कंडेम कर रहे हो, خدا ہو اس لیے تم کنڈم کر رہے ہو کہ میں کیوں نہیں ہوں خدا. یہ ہے مسئلہ.
کوئی کہتا ہے کہ بھائی اگر ہم فیوچر کو اگر پہلے سے ڈریکٹ کر لیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر مجھے پتا چل جائے 48 گھنٹے پہلے کہ طوفان کراچی کے سمندری ساحل سے ٹکرائے گا تو میں کراچی سے لاہور شفٹ ہو جاؤں گا, تو اس میں کیا ہے؟ مطلب تقدیر سے تقدیر کی طرف میں جا رہا ہوں, مطلب طوفان خدا کی تقدیر ہے لیکن ہجرت یا نقل مکانی جا رہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے, اس میں کیا آ رہا ہے؟ مطلب وہ تکمیل تو ممکن ہو رہی
ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ سمندر کے اندر رہتے ہیں, سمندر کے سمندر کو جانتے ہیں, سمندر کا علم رکھتے ہیں, ان کو سمندر کا مزاج پتا ہو, مزاج شناس ہوتا ہے, وہ پتا ہوتا ہے سمندر کیا کرے گا اور چالو کرے گا. وہ تو کہتے ہیں ہم پانی کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں نا تو یہاں پتہ چل جاتا ہے آج مچھلی ملنی ہے نہیں ملنی. ٹھیک ہے, اب آپ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے بات, تو ہم فیوچر ڈیٹرمن کریں گے ہمارے لیے بنیادی طور پر جو آپ جاننا چاہتے ہیں وہ فائنینشیل ریزن, اس کی فائنینشیل کاسٹ, اس کی فائنینشیل مینجمنٹ. کیوں؟ یہ زندگی کی آپ کاسٹنگ کر لو گے, ایوری تھنگ ایچ اینڈ ایوری سیکنڈ اینڈ ایچ اینڈ ایوری مومنٹ آف یور لائف از انوالوڈ ان کیلکولیٹنگ اینڈ ایکومولیٹنگ دی پاسبلٹی آف کیپیٹل انفلو اینڈ دی پاسبل کیپیٹل فلائٹ. اسی کی بنیاد پر آپ یہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب ایک آدمی یہ کر رہا ہوتا ہے, یعنی کہ رسک مینجمنٹ کر رہا ہوتا ہے بنیادی طور پر, تو ہر آدمی تو نہیں کر رہا ہوتا ہے نا یہ کام, کچھ مخصوص لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو ہے ٹی وی پہ جو اینکر پرسن ہوتے ہیں ان میں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ چڑیا نے ان کو کوئی بات ہوتا ہے کبوتر نے بتا دی, کسی نے بتا دیا, بندر نے بتا, جن کا جس سے جو تعلق ہو وہ بتا دیا. تو ہم لوگ وہ باتیں کیوں سن رہے ہیں؟ ہمیں اس سے کیا کچھ بھی کروں, میں کیا کروں؟ میں اسی لیے سن لوں کہ میری انویسٹمنٹ کا کیا ہوگا. تو بنیادی طور پر جو پورا کا پورا نظام ہے نا وہ نظام ہے فیوچرسٹک, فیوچر انویسٹمنٹ اور فیوچر گین اینڈ فیوچر لاس, فیوچر مارکیٹ اورینٹیشن, فیوچر رسک, فیوچر پاسبلٹیز آف گین ایوری ڈیٹ. یہ ہے تو پرابلم یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی سسٹم ہے وہ اس کی فیس ویلیو کچھ ہے اور ہڈن کچھ ہے. یعنی کہ نیشن اسٹیٹ جو جو اپنے آپ کو جس طرح پیش کر رہی ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے کیا نیشن اسٹیٹ؟ امیرکن اسٹیٹ کیا ہے یہ پورا کا پورا پتا ہوگا امیرکن اوباما کو؟ اوباما کے باپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ امیرکن اسٹیٹ کیا ہے. 22,000 انٹرنل ایجنسیز ہیں امیرکا میں, اس میں کچھ پریزیڈنٹ کو جواب دیں, کچھ پریزیڈنٹ کو جواب دیں, کچھ ایجنسی کے اوپر ایجنسی, ایک ایجنسی کے اندر کئی ایجنسیز ہیں جو ایجنسیز کو مانیٹر کر رہی ہیں, آپس میں ان کی لڑائی ہوتے ہیں مار دیتے ہیں ایک دوسرے کو, کوئی پوچھنے والا نہیں. ممبر ہوتے ہیں ان کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی, ایگزٹ ہی نہیں کرتے وہ دنیا میں کہیں, نہ ان کا کوئی نام ہوتا ہے نہ کوئی ان کا بینک بیلنس, کچھ نہیں ہوتا. اسٹیٹ کے ممبر ہوتا ہے, ضرورت نہیں کسی کو ہاتھ لگا دیں, پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا, وہ کس کے ڈیفینڈر ہیں اسٹیٹ کے. آپ اس کا مطلب یہ ہے اسٹیٹ انٹرنسکلی کیا ہے, اس کی نالج تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے, وہ کسی مائل کے لال میں نہیں ہے. دنیا کا کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا اسٹیٹ اصل میں کیا ہے, میں بتا سکتا ہوں, کسی کو نہیں پتا دنیا میں کسی بھی اسٹیٹ کے بارے میں مکمل طور پہ وہ کیا ہے, بتائے نہیں سکتے. امیرکن اسٹیٹ, پاکستان اسٹیٹ, دنیا کی کوئی بھی اسٹیٹ کا کوئی بھی ممبر, چونکہ وہ پرٹیکولر ہے اور اسٹیٹ جو ہے ایک بیوروکریٹک ہول ہے, اس بیوروکریٹک ہول کے اندر کتنے لوپ ہولز ہیں آپ کو نہیں پتا, کنسیویبل نہیں ہے. اس کو لوگ سیلیبریٹ کریں تو بٹس اینڈ پیسز کے اندر جو تمہیں نالج ملتی ہے اس میں دو احساس بیک وقت میں ہوتے ہیں, اس کو مجھ سے زیادہ پتا ہے اور ہم دونوں بنیادی طور پر ایک میں رہتے ہیں. तो अभी एक कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने ऐसे ही बात हुई तो मैं आग लगी तो मैं ऐसे उसको अटैक किया जा रहा है। मैंने उससे कहा कि जो तुम इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर सारी बकवास करते हो किस बुनियाद पर करते हो, ये तो तुम उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर करते हो जो फिल्टर करती है स्टेट, तो तुम किस बुनियाद पर अपने आप क्या तुर्रम खानी दिखा रहे हो, तुम क्या हो तुम, यू आर नथिंग, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। 10 साल बाद स्टेट अपने जो पेपर निकाली उसे पता लगा तुम सब गधे थे और तुम जो तजिए कर रहे सब फजूल थे, कोई हैसियत नहीं सब कुछ, और तुम में जो आदमी को स्टेट जो है कुछ ना कुछ बता देती है वो तुम लेके गले में ढोल डाल के पीटते रहते हो और उसके नजर में लोगों का ओपिनियन बनाते हो, इसकी बुनियाद पर तुम अपने आप को आलिम समझते हो और उसके बाद बुनियाद पर तुम्हें लोग इज्जत देते हैं, तो तुम फ्यूचर में झांकने वाले हो लेकिन फ्यूचर में भी तुम बिट्स एंड पीसेस के अंदर झांकते हो, जितना फ्यूचर तुम्हें दिखाता है वो तुम जाके फैला देते हो लोगों के अंदर और लोगों के जहनों को सड़ाते हो। तो इसलिए मैंने तुम सब पे लानत भेज दी है, मैं देखता ही मैं कुछ देखता ही मैं अंधे की तरह जिंदगी गुजारता हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा, देखिए जब होगा तब देख लें, इस दुनिया को अल्लाह ताला चलाता है, समझे। तो बताने का मतलब ये कि आप देखेंगे कि रिस्क फ्यूचर के बारे में नॉलेज की अर्ज तो है लेकिन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द इग्नोरेंस है हर सतह के ऊपर, पॉलिटिकल प्लेन पर, इकोनॉमिक प्लेन पर, कल्चरल प्लेन पर, इंटरपर्सनल प्लेन पर, हर प्लेन पर इग्नोरेंस। दो आदमी के कानों के बीच में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, उसकी फसलियों के पीछे क्या चल रहा है कुछ नहीं पता, अगले लम्हे क्या होने वाला है नहीं पता, अगले ग्लोबल वेदर क्या होगा नहीं पता किसी की, हर कोई इसके ऊपर बिलियन ट्रिलियन और जिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है कि मुझे पता चल जाए कि अगले लम्हे वेदर कैसा होगा, बिलियन ऑफ डॉलर की सैटेलाइट भेजी हुई है वो उसके साथ हजारों लोग जुड़े हुए सब कुछ कर रहे हैं ना लोग, लेकिन उसके बावजूद ये एहसास तो जागरूक है कि हमें फ्यूचर का नहीं पता। दो फैक्टर होंगे कि अगर मुझे नहीं पता तो फिर मैं तो होपलेस हूँ, इग्नोरेंट हूँ, और अल्लाह मियाँ ने क्या किया मुझे तो मुझे बताया नहीं है फ्यूचर, और मैं पपेट ऑफ द गॉड हूँ और मैं आज़ाद नहीं हूँ और आज़ाद नहीं हूँ और आज़ाद नहीं, तो आज़ादी कैसे मिलेगी, नॉलेज से मिलेगी, नॉलेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, खर्चे करो, ये करो, वो करो, फला करो। अब इन सारे मसाइल के हल कौन पेश करता है, वो कहते हैं कि भाई आपको चूंकि इग्नोरेंट है लिहाजा आपके मैनेजर ऑफ फ्यूचर होंगे रिस्क मैनेजर, जो आपको देंगे एहसास